ओम शांति। तो आज जो कई प्रकार के थिंकिंग हम लोग सुनते आए हैं, तो आज का जो विषय है कि एनालिसिस थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच, तो इसका हम सब ब्राह्मण जीवन में अनुभव तो करते हैं, क्योंकि विश्लेषण अर्थात उसको जानना, उसको निहारना, उसको झांकना, और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा और इससे मुझे कितनी सफलता मिली है, ये सब बातों को इस तरीके से सोच के एक बेहद रूप से बेहद में जाकर के सोचना, इसको एनालिसिस थिंकिंग कहा जाता है। एनालिसिस थिंकिंग तो हर व्यक्ति करते हैं, सभी के जीवन में इसकी जरूरत पड़ती है, और उच्च मुकाम तक पहुंचना है तो इसकी अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए ब्राह्मण जीवन तो हर दिन बाबा नया नूतन बातें करो, अपने को नवीनता में डालो। हर दिन एक ही बातें अगर होती है, एक ही बातें मन में चलते रहते हैं तो मन को ऐसी सारी बातें बोर लगने लगता है, क्योंकि कल वाली चीज आज है, आज की बातें कल है, तो आगे जाकर के व्यक्ति ठंडा ठाकुर हो जाता है, पुरुषार्थ में नवीनता नहीं आती है। और जो चीज हम पाने चाहते हैं जीवन में, इतनी बड़ी लक्ष्य और इतनी बड़ी उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं, तो इसके लिए ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा तो हर दिन विचार सागर मंथन करके बच्चों को नए नए और गर्म गर्म हलवा खिलाते थे, और कोई बातें अगर डेली होता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसी कारण से बाबा ने इतने सारे जो मेथड अपनाए हैं। तो हम सबको भी बाबा यही शिक्षा देते हैं, और यही शिक्षा को अपनाओ। एनालिसिस थिंकिंग को ब्राह्मण के भाषा में तो विचार सागर मंथन कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है, मनन कहा जाता है, जो मन को ऑन करने की जो कला बाबा ने हम सबको सिखाया है, तो मन को ऑन करना, मनन इसको कहते हैं, मन ऑन हो जाता है, ऑन मन ऑन हो जाता है तो इसको मनन कहा जाता है। तो जितना हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हर दिन हमको नई नई बातें तो बाबा देते ही हैं, तो ये चीज हमको हर दिन जरूरत है। अगर हम अपने जीवन को आगे कुछ दुनिया को देने चाहते हैं, अपने को कुछ बनाने चाहते हैं, तो ये ब्राह्मण जीवन में अगर चिंतन नहीं होगा, एनालिसिस थिंकिंग नहीं होगी, तो सफलता सहज दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसे कि जीवन सुना सुना लगने लगेगा आगे जाकर के, चाह करके भी हम खुश नहीं रह सकेंगे। तो पूरा जीवन का आधार ही सोच के ऊपर टिका हुआ है, पूरा जीवन का नींव ही सोच है। इसीलिए कहा जाता है जैसा सोचते हैं ऐसे बनते हैं, जैसा सोच होता है वैसे हमारे चाल चलन व्यवहार होते हैं। तो जब मन चलता है तब तन चलने लगता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है, मन हिलता है तब तन हिलने लग जाता है। तो इसीलिए मन को हम इसीलिए जितना हम एनालिसिस थिंकिंग उसको कहा जाता है, जब हम कोई चीज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको अजीब सा तरीके से देखना, उसको कई एंगल से उसको झांकना, कई एंगल से उसको निहारना, कि इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर होता तो इसका सोच कैसे होते, अगर वो व्यक्ति मैं यहाँ पर अगर साइंटिस्ट बन के सोचता तो ये मेरा इस बातों में मेरा क्या पहुंच होता, तो इस चीज से मैं क्या प्राप्त कर सकता। अगर मैं उस क्षेत्र में पत्रकार होता तो पत्रकार की निगाहें कैसे होती, है ना? तो इस प्रकार से अगर मैं इसमें डॉक्टर होता तो इस बातों को अगर मैं देखता तो इसमें क्या रिजल्ट निकलती, इससे मुझे क्या बेनिफिट होता। तो इस तरीके से एक देखने की जो सोच है, देखने की जो भाव है, तो भाव को भी तभी बदल सकते हैं जब वो चीज, हर चीज हमारे लिए नया बन के आता है। तो नया लाने के लिए दुनिया में कितना भी क्लास से सुनेंगे, कितना भी हम दूसरों का हर बातों का अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन जब तक हम अपने यथार्थता के धरातल पर नहीं उतरते हैं इस चीज को करने के लिए, तब तक हमको वो चीज प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कुछ करना पड़ता है, कुछ मिलता है, तो कुछ करे बिना कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए नहीं तो कल जो सोचती आज भी वही सोच होगा, तो कल भी मेरा वही सोच होगा। तो इसीलिए कहा जाता है अगर सोच को नहीं बदलते हैं तो जो भी आने वाली परिस्थितियां होगी उसको सामना करने के लिए तैयार रहने चाहिए। और सामना तो तभी कर सकेंगे जब हमारे पास में सोच अच्छे होंगे, अच्छे सोचोगे, श्रेष्ठ सोचोगे, महान विचारधाराएं हमारे अंदर चलती होंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान की लहरें चलते होंगे। तो कल जिस नजर से हम जिस व्यक्ति को देख रहे थे, आज उसके ऊपर हमारी नजर बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, कहीं उम्मीद की, है ना, उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगती है कि इससे भी कुछ हो सकता है, उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना आने लगती है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि तो जैनी फिलोसफी और बौद्धिज्म में कहा जाता है कि तीन चार दिन से ज्यादा एक कुटिया में, एक गुफा में, अथवा एक कंदराव में, अथवा एक आश्रम में रहने की इजाजत नहीं है उनको, क्योंकि वो जगह बदलते रहते हैं। लेकिन हम लोग तो बाबा के घर में बैठे हुए हैं, जगह तो नहीं बदल सकते, लेकिन बाबा ने हमको वो टेक्निक सिखाई है कि हम अपने भावना को, सोच को, थिंकिंग को बदल सकते हैं। तो वहां रह करके भी हम अच्छे अनुभव करके अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं। इसलिए चिंतन की धारावाहिक बहते रहने के लिए दुनिया में तो तीन चीज बताए जाते हैं। एक तो कहते हैं चिंतन की जरूरत है, एक भ्रमण की जरूरत है, तीसरा पठन पाठन की जरूरत है, तब चिंतन की धारा बदल सकता है। तो बाबा ने हम सबको यहाँ पर वो चीजें दिए हैं कि आज तक हमने कई बार देखा है कि बाबा के बच्चे कई जब यहाँ आए हुए, कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 35 साल हुए हैं, कई ने तो आबू रोड भी नहीं देखा है तब जब से आए कोई तो आबू रोड भी नहीं पहुंचे तो 45 सालों से। तो उनको हम कभी कभी पूछते हैं, आप लोग यहाँ रहते रहते आपको कैसे लगता है कि लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, वो मजा लूटते रहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं तो उनका उत्तर मिलता है कि आप जहां भी जाओगे वही पहाड़ी मिलेगा, वही जंगल मिलेंगे, वही तालाब मिलेगा, वही रास्ते मिलेंगे, वही शहर मिलेगा, और है क्या वहां पर। हाँ, वही लोग हैं जैसे माउंट में हजारों लोग आते हैं, वहां टेंशन होके इधर आए होंगे, उनको हम यही देख लेते तो इस तरीके से उन्होंने सोच को बदल दिया है। तो कभी कभी उनको हमने न्यूज पढ़ते हुए भी देखा, तो न्यूज पढ़ने के बाद में उनके अंदर इसी वैराग्य आती है। वे देखा हमने कि सारी दुनिया घूमने से भी जिनको उतना वैराग्य नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा वैराग्य वो न्यूज पेपर पढ़ने के बाद में जैसे वो खामोश हो जाते थे। हर दिन देखा हमने कई बार उनके नदी को करके कि दुनिया रहने लायक नहीं है, अब तो ऐसी हालत हो गई है, क्या हालत है दुनिया की। उनको वो न्यूज पढ़ने से इतना वैराग्य आ जाता था। तो अभी भी हमने ऐसी आत्माओं को देखे। इसीलिए जो चिंतन है, चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, अलौकिक बनाने के लिए और महान बनाने के लिए सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोच अर्थात वो गहरी सोच है। कभी कभी हम लोग चलते चलते कोई बातें मन में आ जाती है, कोई बातें हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, चलते चलते कोई बातें टचिंग हो जाती है तो आई हुई बातें आगंतुक बातें है, लेकिन उस बात को भी अगर अनुभव के कसौटी पर अगर हम खड़े उतारते हैं तो जीवन का वो हिस्सा बन जाता है। तो अनुभव की अथॉरिटी हमारे जीवन में आने लगता है। तो अनुभव की अथॉरिटी अर्थात क्या है कि कोई चीज हमारे से और जैसे कि परछाई, जैसे कि हमारे नजर से वो चीज उजल न पड़े, उस चीज को हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, जाना हुआ है, हमने अनुभव किया हुआ है, इस चीज के ऊपर में हमारा जैसे कि धाक अनुभव की अथॉरिटी हमारे पास आएगा, तब कहा जाता है अनुभवी जीवन। इसीलिए कभी कभी दादी जाने की से क्वेश्चन करते हैं कि बड़ी दीदी उन्हें क्वेश्चन करते हुए हमने सुना है कि दादी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो दादी कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस जोड़ करके सुना देती। तो फिर बहने बोलते कि दादी आप तो वही बातें सुनाते हो, तो मैंने जो 80 साल में जो चीज देखा है वही तो सुनाऊंगी ना। हाँ, जैसे कि कहां से लाई हुई बातें, किसी का अनुभव की बातें, किसी ने की हुई बातें मैं क्यों सुनाऊं? मैंने जीवन के एक एक चीज को अनुभव करके देखा है तो मैं वही चीज सुनाऊंगा ना, और वही चीज आपको काम आएगा। जैसे किसी से उधार में लाए हुए चीज होती है ना, वो ज्यादा काम में नहीं आता है तो उसको रिटर्न भी करनी पड़ती है हमको। लेकिन हमने फिर भी उसको कहीं ना कहीं चुपता तो करनी ही पड़ती है हमको, इसीलिए हम इसके अनुभव के अथॉरिटी बन जाए। तो ये मार्ग ही है अनुभव की अथॉरिटी बनने का। तो हमको आज जैसे कि स्लोगन में बाबा ने बताए कि मन बुद्धि को बाप के आगे सरेंडर कर दोगे तो जिसके आज उसके द्वारा आपको जो चीज मिलेगी तो वो चीज आपके हिस्सा बन जाएगा, जीवन का हिस्सा बन जाएगा, अनुभव का हिस्सा बन जाएगा। उसके पीछे आपको फिर दोबारा जैसे कि टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। तो एक एक चीज के अनुभव करते जाना, इसको कहते हैं एनालिसिस थिंकिंग। जैसे कि ज्ञान की गहराई, जैसे कि एक एक ज्ञान की गहराई में बाबा ने कई बार मुरली में बोला है कि बच्चे इतनी ज्ञान की जो गहराई में जाओ कि उसके तले में डूब जाओ, जिसके द्वारा आपको जो चीज मिल जाती है तो आपको आगे जा करके उस चीज आपका जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इसे गुणों के लिए भी बाबा ने बोला है कि एक एक गुण के तले में जाओ और वो इतनी गहराई में जाओ कि वो बातें आपकी बुद्धि में आते ही उसके जैसे आपने जितने दिन से चिंतन मनन करके अनुभव की गहराई पाई है वो चीज आपकी स्मृति में आ जाए। तो इतने सारे गुण हमारे है कि जो बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सारी शक्तियां हैं जो शक्ति को हम स्मृति में लाते ही, जैसे कभी कभी हम मुरझा जाते हैं, स्मृतियां तरोताजा नहीं रहता है, तो उस समय भी हमको ये अनुभव इतना काम में आता है कि जो कोई भी परिस्थिति और कोई भी समस्याएं जीवन में आ जाए वो हम उसको सहज रूप से पार कर सकते हैं। जैसे एक बार हम जब घर गए थे तो घर एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाना था, तो वहां जाते समय हमको एक भाई ने गाड़ी में बैठा दिया। तो जैसे कि 150 ऐसे ज्यादा किराया, इतना लंबी सफर थी, तो कंडक्टर को बोल दिया था कि ये भाई है इसको कुछ किराए कुछ नहीं लेना, ऐसे कुछ बोल दिया। वो बाबा के बच्चा था ऐसे लगभग, संबंध और संपर्क में आना तो मैंने उसका मालिक, तो मालिक ने कंडक्टर को बता दिया। तो फिर हम उस रास्ते से निकलते जा रहे थे तो हमारी जो हमको जो कोर्स कराने वाली दीदी थी उस स्थान पर गई थी, नई स्थान था, तो वहां पर पहुंचना है मुझे। तो हमने सोचा बीच में अच्छे अच्छे संकल्प चले कि हमारी दीदी यहाँ पहुंचने के बाद में इतने सारे लोगों को बाबा का संदेश दिया, इतने सारे लोग पॉजिटिव बन गए, देखो इतनी लंबी सफर कर रहे फिर भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे विचार अच्छे चल रहे थे। तो बाद में क्या होगा, आधा रास्ता से ज्यादा क्रॉस होने के बाद में उस मालिक का घर आ गया, तो मालिक उतर के चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद में वो कंडक्टर फिर आ गया मेरे पास, मालिक उतर गया, फिर बोल रहा कि चार्ज किराया चाहिए। तो हमने चुपचाप से निकाल के दे दिया उसको, कोई भी संकल्प नहीं किया मैंने, तो एनालिसिस थिंकिंग मैंने उस समय किया कि इतना लंबा समय तो मैंने पॉजिटिव संकल्प ही करते आए हैं, आया हूं, तो अभी व्यर्थ चलाने की कोई जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल मुझे इसको चुकता तो करनी ही पड़ेगी, ज्ञान तो कहता है। आज मैं फोकट में ले रहा हूं तो आगे कहीं ना कहीं तो मुझे चुकता करनी ही पड़ेगी। तो मैंने उस बात को उधर कन्वर्ट करके मैंने उसको दे दिया जितना उसका चार था, मैंने वो डबल भी लिया हो या तो वो भाई ने उसको दिया हो, क्यों कोई मैंने ध्यान में नहीं रखा। तो उस ऐसी एक जो परिस्थिति के समय मैंने संकल्प को इतना स्ट्रांग बनाया कि ऐसी परिस्थिति तो संसार में आते ही रहते हैं। तो ये समस्या कहीं भी अगर आता है तो आगे के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए। तो इस तरीके से यह संकल्प को हमने मजबूत बनाया। तो फिर रात को दीदी ने मीटिंग बुलाई थी, कोई नए लोग आ रहे हैं बोल के दीदी ने बोला कि कोई भाई आ रहे हैं उनसे मिलना है, तो ठीक है। तो फिर बाद में मिलने की बातें आई तो वही भाई जो मुझे किराया जो लिया था वो भी आया उसमें। तो फिर जो बातें हमने अच्छी रीति से उसको शेयर किया, जो बातें बाबा की सुनाई, तो बाद में वो पश्चाताप कर रहा था क्या कर दिए या न दिए। फिर ये तो उल्टो उसको ना ऐसी सोच आ गई कि बेकार में लिया, उसने तो ना बोला था, मैंने अपने स्वार्थ के लिए लिया करके उसको महसूस हुआ। फिर लास्ट में सॉरी भाई करके हाथ में लगे गया। तो इस तरीके से एक सोच को मैंने इतना स्ट्रांग बनाया। तो वही सोच मुझे जब 2013 में घर गया था तो हमारा भाई की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, पूरे जाने की तैयारी में था, छोटा भाई था, तो 96-95% उसके लगभग लिवर डैमेज हो गया था। तो डॉक्टर ने तो अल्टीमेटम दे चुके थे कि 15 दिन से आगे नहीं चलेगा गाड़ी, जाएगा। तो सूजन जैसे टांग से शुरू हो गई थी, पेट तक आ गया था। तो वो हॉस्पिटल जाने को तैयार ही नहीं था। और यहाँ फोन आ रहा है कि भाई जाने की तैयारी में जल्दी आ जाओ, 6 दिन बाकी है, मुझे जाना है, टिकट 6 दिन पीछे का है। तो 6 दिन भी जैसे कि कुछ महीनों जैसा लग रहा है मुझे, फिर भी मैंने अपनी धैर्यता को बांधे रखे, बाबा को बोल करके कुछ सकार देते रहे। तो वहां पहुंचने के बाद में मुझे जिस भाई ने देखा तो बोलता है उसकी जागने की बांचने की उम्मीद पैदा हो गई। हाँ, बांचने की उम्मीद पैदा हो गई, भैया मुझे जैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचाओ, मुझे जीना है। तो रातों रात आज पहुंचा शाम को, सुबह ही उसको जैसे कि हॉस्पिटल वहां पर मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है, वहां लेके जाने की तय हुई। तो उसको मैं लेके जा रहा था तो जिस एम्बुलेंस को हमने बुलाए थे वो बीके का ही एम्बुलेंस था, उस एरिया में 2-4 एम्बुलेंस है उसकी। तो माताजी ने बोला कि भाई को लेके आना, हम भी देखते हैं। तो उस भाई को देखने के बाद में 90 किलो वाला वजन वाला आदमी था, 25 किलो का हो गया था। वैसे हम भी डर गए उसको एक बार देख करके। तो फिर उसके बाद में माताजी ने बोला कि ये भाई के लिए सहयोग हो जाएगा, वहां छोड़ के आ जाना हॉस्पिटल में, कुछ चार्ज नहीं लेना बोला। तो ठीक है, तो हमने ठीक है, हम कोई दूसरा काम करेंगे उतने पैसे से, 3,000 से ऐसे कुछ चार्ज थी उसकी। तो ठीक है करके वहां पहुंचा। तो मैंने उस तो 3 साल पहले जो अनुभव किया था ना, जो कॉन्ट्रेक्टर ने मुझे इस तरीके से जो लिया था, ये संसार के लोग है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि ये वहां जाकर के कहीं हम इसके पीछे न पड़ जाए। हमने पहले वो थिंकिंग लाए थे कि हो सके तो देना पड़े तो मुझे पहले रेडी रहना चाहिए। हाँ, चाहे बीके है चाहे कोई भी है, हिसाब किताब तो है, आज नहीं तो कल मुझे देना तो पड़ेगा ही। तो यही बातें वहां जाकर के हुआ कि जब उसको छुट्टी करके हम पेशेंट को अंदर लेके गए, वो आधा घंटे से वो घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। तो आप अभी तो गए नहीं, हमको चार्ज आपने दिया ही कहा है, बोलता है। तो मैंने पहले सोच बनाया था तो उसको 150 का सोचने 300-3,000 की जो चार्ज देना पड़ा ना, एक भी संकल्प मेरा नहीं चला। तो सोच को बदल दिया मैंने कि कभी भी ऐसी घटनाएं अगर घट जाती है तो इसके लिए मुझे संपूर्ण तैयार रहना चाहिए। तो 3,000 रुपये हमने केस गिन के दिया। अगर चाहे तो मैं फोन कर सकता था माता जी को, वो भाई जी इतना अच्छे संबंध है, लेकिन मैंने दोबारा संकल्प ही नहीं किया, फोन ही नहीं किया, दोबारा कभी बातें नहीं हुई उनसे। बातें हुई लेकिन अपने बीके के हिसाब से हुई है, लेकिन उस तरीके से हमने नहीं किया। तो इसका मतलब कोई भी चीजें, कोई भी घटनाएं, कोई भी परिस्थिति घटना घट जाती है ना, तो व्यक्ति जैसे कि परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता तब आती है जब व्यक्ति कहीं ठोकर खाता है, कोई परिस्थिति में चपेट में आता है। तो इसीलिए कहा जाता है पढ़ने से भी ज्यादा व्यक्ति परिस्थिति में पढ़ने से उसकी बुद्धि ज्यादा खुलती है और वो ज्यादा समझदार बनता है। इसीलिए हम सबको भी एनालिसिस जो थिंकिंग है तो हमको हर क्षेत्र में यूज करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में। अगर चल रहे हम जैसे अभी वॉशरूम में जा रहा था तो सब दरवाजा सब कुंडी लगे हुए सब लाइट जल रहे, तो देखा कि अगर कोई अंदर होता तो कुंडी नहीं लगता। तो हमने उसी समय बुद्धि चलाई कि अंदर कोई नहीं, अगर उसको बुझा दिया, अगर होगा तो आवाज तो करेगा जरूर। तो सोच को कैसे हम बदल सकते हैं, तो सोच को बदल करके देख करके ही हमको बहुत सारी चीजें फायदा मिलने लगता है। तो फायदा जीवन के लिए एक वो जैसे कि हिस्सा बन जाता है। तो सोच को बदलना आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण के जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक बाबा ने हर प्रकार की बातें बताई हुई है, चिंतन के लिए, मनन के लिए, शोमान के लिए, वरदान के लिए, जो भी बातें बाबा ने दिया हुआ है। तो ये चीजें अगर कोई करता है तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है, आध्यात्मिक लीडर बन जाता है। और किसी भी चीज में उसको डर पैदा हो नहीं होगा, वो निडर बन जाता है। क्योंकि तो स्पिरिचुअल जैसे कि एनालिसिस थिंकिंग करने वाला जो व्यक्ति होगा, तो दुनिया में भी अगर एनालिसिस थिंकिंग का महत्व देखा जाए, जो अगर कोई कविता के क्षेत्र में कवि होगा तो बहुत बड़ा कवि बन जाएगा, लेखक के क्षेत्र में उसके पास में एनालिसिस थिंकिंग होगा वो बहुत बड़ा लेखक बन जाएगा, उपन्यासकार होगा तो एनालिसिस थिंकिंग उसके पास में चलती होगी तो वो दुनिया में पॉपुलर बन जाएगा। जैसे साइंटिस्ट भी तो ऐसे तो नहीं बनते है ना, एनालिसिस थिंकिंग के बिना कोई भी व्यक्ति उच्च मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकता है। इस संसार का नियम है कि कुछ करके गुजरना पड़ता है तभी वो चीजें हमारे जीवन में आते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति होगा, जैसे कि बिजनेस के क्षेत्र में कोई व्यक्ति होगा, उसके पास में जैसे कि नया सोचने की अगर सोच होगी तो बिजनेस को चार चांद लगा देता है। जैसे कि हमने देखा है कि पहले हम एक भाई के साथ में बिजनेस करते थे, वो भी बिके हम भी बिके, साथ में रहकर के बिजनेस चलती थी। तो कारण अकारण हम मधुबन पहुंच गए तो उधर ही रह गए। तो उसके पास में ऐसे सोच की जो एनालिसिस करने की जो थिंकिंग थी ना, तो बाजार में उसकी इतनी अच्छी पहुंच थी, पूरे 350 से ज्यादा दुकान थे उसमें उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी, उसको कोई पैसा देकर के सामान लेने नहीं पड़ता था। सिटी बाजार से पैसे आ जाते, तो सामान आ जाते थे उसी अनुसार से वो बिजनेस करते थे। तो बाद में मैं यहाँ आने के बाद में कहते हैं कि वो विदेश चले गए बिजनेस के लिए, चाइना की तरफ रुख किया उन्होंने। तो चाइना में भी सबसे पहले वहां जाकर के रहने वाले वही व्यक्ति थे उस एरिया में, तो वहां जाकर के वहां की लैंग्वेज सीखा जो कि दुनिया का सबसे हार्ड लैंग्वेज है। तो उसके बाद में आज वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गए, विश्व में कई देश में उसने अपना वो फॉर्म खोल के रखा हुआ है। तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गए। तो नए नए सोच, और जिसके पास में नए सोच नहीं थी, नया कुछ करने की, नया कुछ कर गुजरने की नहीं थी, वो अभी भी वहीं पर है। वही चना चटपटे और वही होलसेल का थोड़ा बटा दुकान चला के चल रहे, लेकिन वो आज प्लेन भी उनके लिए लेट पड़ रहा है, सुपरसोनिक विमान की जरूरत ऐसे लगता है, इतनी फास्ट लाइफ उनकी हो गई। तो इसका मतलब देखते देखते जब एक सोच को बदलता है व्यक्ति, और हर व्यक्ति कहीं जाकर के ढलने की कला तभी आ सकता है जब उसकी अच्छी सोच होते, नहीं तो वो व्यक्ति वहां जाकर के ढल नहीं सकता है। जैसे कि आज देखिए मोदी जी कहीं भी जाते हैं ना, विश्व के किसी भी देश में एक लाइन अथवा दो लाइन उस देश की भाषा के साथ ही वो भाषण शुरू करते, इसीलिए आज विश्व में दूसरे नंबर में पॉपुलर नेता के लिस्ट में हो। क्यों? हाँ, पहला टॉम। तो इस तरीके से लोगों में देखे तो अपनी छवि को अच्छे रखने के लिए, बनाने के लिए कुछ सीखना कोई कम बात है नहीं है ना। जैसे कि तमिलनाडु गए तो तमिली भाषा में बातें करना दो तीन लाइन है ना, चाहे उड़ीसा में गए उड़ीसा के भाषा में, राजस्थान से बातें करते लाइन राजस्थान, लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें। तो जो सोच को बदलते हैं एनालिसिस करके बुद्धि को पहले से क्लीन और क्लियर रखा हुआ होता है ना, तो वो कोई भी बातें उसको ग्रहण करने में बहुत इजी होता है। इसीलिए सोच को बदलने से, एक भाई निश्चित सेवा करते हैं जो अभी कितने सारे स्टेट के लोग माउंट आबू साइट सीइंग के लिए आते हैं, वो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का उसका इच्छा है। हाँ, तो हर स्टेट के व्यक्ति से दो चार लाइन में वो बातें करता है, उसकी समस्याएं तो दो चार लाइन में ही होता है, ज्यादा से ज्यादा जाना नहीं पड़ता है। तो वो आज सभी भाषा का थोड़ा थोड़ा, कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो उसी भाषा में बात करता है, तो वहां के लोग खुश हो जाते, क्योंकि ये खुश करने की एक बहुत अच्छी तरीका है ये। इसीलिए जो एनालिसिस थिंकिंग जिसके पास में होगा उसको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि वो व्यर्थ से सोते मुक्त होगा, व्यर्थ फालतू नेगेटिव परदर्शन परचिंतन। क्योंकि जिसको एक बार एनालिसिस थिंकिंग करने की कला आ गई ना, उसको जैसे एक चस्का लग गया है, चस्का पड़ गई है, उसने उस चीज का रसपान किया है, उसने उसका अमृतपान किया है, उसका उसने रस स्वादन किया है, तो उसके जीवन जैसे कि हरा भरा होने लगता है। हाँ, वो तो है, लेकिन वो नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, हमारी शक्ति एनर्जी को नष्ट करता है, वो भी कभी कभी जरूरत है। तो एक दिन हमने, एक भाई अच्छे चिंतन करते हैं कभी कभी, उससे हमारी मुलाकात होती रहती, तो बाहर की किताब वो ज्यादा उतना नहीं पढ़ते हैं वो, तो अभी कई साल से चिंतन करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने साल से चिंतन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका आगे कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मैंने उनको बताया कि मेरी बुद्धि में आ गई कि देखिए भाई साहब, कभी कभी किताब पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास में जो चिंतन किया ना, आपके पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो अभी बस आप चिंतन करोगे तो आपको उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिक्स करोगे वो वाटर बन जाएगा, तो आप पानी कितनों को पिला सकोगे। जैसे हमारे डॉक्टर सचिन अभी सारी दुनिया को पानी पिला रहे, ज्ञान की पानी, सभी कितना डिमांड है आज, सभी तरफ का जो मिक्स करके जो सुना रहे ब्राह्मण को, आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम सबको भी जो एक ही हिसाब से मैं ही करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, और मेरे आई सर्वे सर्वा है करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम अपने को भी चेकिंग नहीं कर पा सकते। तो इसीलिए जो एनालिसिस थिंकिंग जो करने वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने में खोया रहेगा, अपने में ही डूबा रहेगा, अपने ही चिंतन में, अपने मंथन में, अपने आप से बातें करने में। कभी कभी देखिए, हम भी अभी कई दिन से जैसे कि चिंतन करना थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो सीखते रहते हैं, तो संगठन में ये सब चीजें हमको फायदा मिलता है। तो अभी कोई टॉपिक मिलती है तो हल्के रूप से दो तीन बार चार बार चिंतन करते हैं ना, तो उससे कोई चीज मिलता नहीं है, तो बाहर बाहर ही चीजें होती है। तब उसके गहराई में जब 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा तक उसको घुमाते हैं बातों को, तो उसके करीब, हर चीज के करीब हम जाने लगते हैं, हर चीज उससे मिलने लगता है, वही चीज से कई एंगल से देखना शुरू करते हैं हम उसको, तो उसमें ऐसा मजा आने लगता है कि कभी कभी हमको होमवर्क मिला होता है चिंतन करने के लिए, हम लोग की घूमने जाते हैं तो दूसरा कोई बीच में आ जाता है ना, बड़ा समस्या हो जाती है उस समय। हाँ, कभी कभी एक बार तो बीच में टेंशन हो गया, एक भाई बीच में छोड़ ही नहीं रहा है मुझे, आज कॉल सुनाना है, अभी ये मेरा सुबह का टाइम निकल गया ना, तो मुझे क्या करना है, तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा जैसे आ गया, तो दूसरी बार मैंने तो एनालिसिस कर लिया कि थिंकिंग को बढ़ा दिया कि इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही टेक्निक है, मोबाइल निकाला और बातें, हेलो अच्छा लिप फंस गया है क्या आपका, ठीक है रोकने मैं आ ही जाता हूँ करके थोड़ा रिटर्न आए जैसा किया, फिर वो तब तक निकल गया, फिर अपना रूट अपना कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि सुबह का टाइम हम किसी को वॉकिंग में जाते हैं कहीं ऐसे कोई टॉपिक लिए बिना ऐसे चलते नहीं है, आया नहीं था, लेकिन युक्ति से मुक्ति मिली मेरे को, क्योंकि ये जरूरी था मुझे, क्योंकि कॉल सुनाना है, अभी दो तीन दिन एंगेज में रहा, इधर उधर बिजी हो गया, मैंने कुछ कर ही नहीं पाया था, ये टाइम अच्छा करके निकल रहा था, बीच में वो टांग अड़ा गया, फिर अब मुश्किल हो जाएगा, अब करे क्या। तो इस तरीके से भी समय को बचाने के लिए व्यर्थ से फालतू से कोई ना कोई चीज, अब दो लोग चलते हैं ना तो कहीं ना कहीं इधर की बातें शुरू हो ही जाएगा। इसीलिए हमने 25 साल से वॉकिंग करते हुए कई सारे लोगों को देखा है, तो जैसे कि वो दूसरों की चीजों में ज्यादा व्यस्त रहने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए स्वयं को अगर, इसीलिए राजू भाई कहीं ऐसे हमारे जो बड़े लोग हैं तो सुबह किसी के साथ में नहीं चलते, क्योंकि हम उस समय कभी कभी तो ऐसा अच्छा अनुभव होता है जैसे अमृत वेले से भी अच्छा अनुभव हो जाता है बाबा के साथ में, और कभी कभी तो ऐसे चिंतन शुरू हो जाती है कि जो रोकने का नाम ही नहीं लेता है, आधा घंटा पौने घंटा तो कम ही पड़ता है। तो इसीलिए अपने में रमने की जो कला हमको सबको ब्राह्मण को आनी चाहिए, नहीं तो छोटी सी बातें होती हम किसी और को सुना देते हैं, लेकिन हम बाबा से ही शेयर करते हैं कई बार। तो इसीलिए कई बार हमने अभी वॉकिंग करते करते सर्व संबंधों का जो 8 प्रकार के जो संबंध है ना, उसमें इतनी अच्छी पकड़ बन गई है कि कोई भी संबंध से बाबा को आह्वान करना चाहेंगे ना, वो सेकंड से भी कम समय में बाबा पहुंच जाते हैं, और उसका अच्छा अनुभव बताए बाबा से अथॉरिटी से बातें करते हैं। बाबा ऐसा होना चाहिए तो होकर के ही रहता है, क्योंकि उसको एक बार नहीं 10वीं बार 20वीं बार करके देखा है। जैसे कि खुदा दोस्त का संबंध है, भाई का संबंध है, कभी कभी डॉक्टर का भी संबंध से बाबा को याद करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी संबंध छोड़ा नहीं है, तो ये अनुभव तो एनालिसिस थिंकिंग के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ये समय ही संगम का समय और ये ब्राह्मण जीवन का महत्व इसीलिए महत्व है, क्योंकि भगवान के साथ में संबंध जोड़ करके बाबा से होने वाली सारी प्राप्तियों को जीवन में लाने के लिए, नए सोच नए विचारों को जन्म देने के लिए, नया विचारधाराओं को जन्म देने के लिए ये एनालिसिस थिंकिंग जो हम बाबा ने जो हम सबको बताया कि ये परीक्षण करके देखो, निरीक्षण करके देखो उसको, वो शब्द आप जब बोल रहे हो तो उसका क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है, वो चीज कहाँ बोलना चाहिए, उस शब्द कहाँ लगाने चाहिए, उस शब्द कहाँ होने चाहिए, इस शब्द का क्या इफेक्ट है, इसका मारक क्षमता कितना है। कि जैसे दुनिया में भी साइंटिस्ट लोग और जो हथियार बनाने वाले लोग होते हैं ना, इसका कितनी मारक क्षमता है, उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो ऐसे हम सबको भी, जैसे कि कहा जाता है कि 1 घंटे का लेक्चर देने के लिए 2 वर्ष का मौन की जरूरत पड़ती है, ऐसा बोला जाता है दुनिया में, 2 वर्ष की मौन की जरूरत पड़ती, 2 साल की, लेकिन हम लोग तो इतना तो नहीं कर पाते हैं, फिर भी 2 घंटा 4 घंटा तो हम रह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो अंतर्मुखी लोग हुए हैं और उनके शब्द में जो वज्र जैसे ताकत होती, जो बोलते हैं ना हृदय को भेद करने वाला ताकत होती, तो इसीलिए उस चीज की जरूरत है। इसीलिए हमारे सचिन डॉक्टर नेपाल गए थे तो वहां पर उनकी एक्टिविटी और उनके हाव भाव को देख करके यथार्थ योगी और जो सच्चा योगी देखना है तो यही बोल के सभी ने ट्रेडमार्क दिया था कि वहां बड़ी दीदी से भी हमारे सचिन भाई जब क्लास खत्म हो गई ना, बस किसी से लेना न देना, अपने कमरे अपनी सेवा, बीच में इधर उधर की बातें किसी से नहीं होती थी। हमारी बड़ी दीदी भी हैरान हो गई, हम लोग भी यहाँ बैठे कुछ बोले कुछ कहे वो नहीं, वो अपने काम में व्यस्त, जो टॉपिक उसके बाद में उसी टॉपिक में उसी क्लास में उनकी बातें हुई, उसके बाद कोई बात। तो इस तरीके से जो अंतर्मुखता की जो प्रैक्टिस उन्होंने कई बार किया बोलते हैं और हमने जो क्लास में सुना है, तो इसका मतलब यही है कि अंतर्मुखी रहने से ही हमको जो एनालिसिस थिंकिंग का नया नया तरीके से जन्म दे सकते हैं, नया नया उस बातों का जन्म कर सकते हैं, वो हमारे हाथ पे है। हम कितना सुखी रहने चाहते हैं और कितना आनंदित रहने चाहते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। ये पूरा संगम का जो समय है, जो बाबा ने हमको साथ में रहने का जो समय दिया, कम्बाइंड स्वरूप का जो अनुभव बाबा बोलते हैं ना, उसका भी हमारे पास अनुभव होना चाहिए, पल पल का अनुभव होना चाहिए। तो ये अनुभव अगर हमारे पास में होता है तो हमको आगे के लिए जैसे सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई भी बातें कहना होता है, कोई भी बातें करना होता है, कोई भी बातें सुनाना होता है, तो किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो उसका हाथों हाथ उसका फायदा होता है। तो एक भाई ने अभी बीच में बोला कि बच्चा बीमार है, भाई साहब आप कुछ इनके लिए कुछ सकाह दो, कुछ करो। दो डॉक्टर बदल चुका हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, दो दिन से इतना परेशान हो रहा है, वो मोबाइल में सुना दिया उसके जो रोने की आवाज 4-5 साल का बच्चा, कि इतना दर्द है उसको। तो बाबा को मैंने बोला, बाबा आप तो भोले का बच्चों का तो बच्चों के लिए तो आप इतने बातें करते हो कि जैसे कि सन्यासी से भी ऊंचे हैं, महान है, ये छोटे बच्चों से ऐसे क्या जघन्य अपराध हुआ है कि इतना परेशान हो रहा है। वो तो आपके बच्चा है, उसका बाप भी उसके आपके बच्चा है, ये बच्चा भी आपके बच्चा है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा करके यहाँ खोड़ा बाबा से रुहरियान किया था। तो तुरंत ही कोई डॉक्टर को उसको टच हो गया कि एक कोई अच्छे डॉक्टर है, किसी ने फोन किया, इस डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो कुछ होगा। तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, दो डॉक्टर बदलने के बाद में नहीं हुआ तो तीसरे डॉक्टर, ऐसे अच्छे डॉक्टर मिल गए। तो 2-3 घंटे का अंदर अंदर ही उनको उसका दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया। तो बाबा हमारे वाइब्रेशन से अगर काम नहीं बनती है उससे भी ज्यादा समस्या होगा, तो किसी को टच करा करके वो काम निकाल देता है। तो इसीलिए जितने भी शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक हमारे पास में होगा, शुभ संकल्पों का, ये सबका जननी है कि एनालिसिस थिंकिंग। तो इसीलिए एनालिसिस थिंकिंग ब्राह्मण जीवन के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, और यो करने वालों के लिए ही ये सुखी जीवन होगा, आनंदित जीवन होगा। वो अकेले होते भी उस संसार में सबके साथ होगा और सबके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए कहीं कहीं स्लोगन लिखा हुआ मिलता है, जिसके पास में है ना श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक है, चिंतन करने की कला है, उस कहीं होते हुए भी वो सबके साथ में है, वो सबके लिए होता है। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों का जन्म, श्रेष्ठ चिंतन का जन्म जो एनालिसिस थिंकिंग के द्वारा ही हमको मिल सकता है। इसीलिए हम सब हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ इसको इजाफा हो जाए और नए नए अनुभव, नए नए अनुभूतियों से ब्राह्मण जीवन लबालब हो जाए, इस शुभ संकल्प के साथ इस शब्द को संकल्प समाप्त करना चाहता हूँ। ओम शांति।